आन्या अकेली बैठी बैठी बोर होने लगी। वो खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। नीचे अन्वय, जीवन और जैक के साथ खड़ा था। तीनों गंभीर लग रहे थे। अन्वय महल की सुरक्षा बढ़ाने के बारे में उनसे चर्चा कर रहा था और एकदम गंभीर चेहरे में बहुत ही कमाल लग रहा था। आन्या खिड़की से टिककर खड़ी हो गई और बड़े प्यार से अन्वय को देखने लगी। जैक और जीवन का चेहरा आन्या की ओर था, जबकि अन्वय का बस बाएं ओर से थोड़ा सा चेहरा ही आन्या को दिखाई दे रहा था। उसकी लगभग पीठ उसकी ओर थी, पर उसका बायां प्रोफाइल बहुत ही आकर्षक लग रहा था। जैक और जीवन अन्वय की बात बहुत ध्यान से सुन रहे थे। अचानक ही जैक का ध्यान आन्या की ओर खिड़की की तरफ चला गया। सूरज की सुनहरी किरणें आन्या के खूबसूरत चेहरे पर पड़ रही थीं। इससे उसके चांद से सुंदर मुखड़े पर सोने जैसी चमक आ गई थी। उसके चेहरे पर अलग ही नूर था और लबों पर छाई मुस्कान तो कहर ढा रही थी। वो इतनी हसीन थी कि किसी की भी निगाहों का उस पर ठहर जाना लाजमी था। जीवन ने देखा कि जैक की निगाहें कहीं और टिक गई हैं, तो उसने भी निगाहें घुमाईं और आन्या को देखते ही उसकी निगाहें अन्वय की ओर घूम गईं। जैक ने पहली बार जब आन्या को जंगल में देखा था, तभी उसे वो पसंद आ गई थी, पर अन्वय इस बात से अनजान था। हालांकि जैक ने खुद भी आन्या के बारे में कुछ गलत नहीं सोचा था। वो तो बस अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था, अन्वय के आसपास रहकर। आज जब आन्या को उसने देखा, तो निगाहें अनायास ही उस पर ठहर गईं। जीवन जैक का भाई था, जो यहाँ रहकर सब काम संभालता था। वो अन्वय को बहुत अच्छे से जानता था, बहुत बार उससे मिल चुका था। अन्वय जल्दी से यहाँ नहीं आता था, पर जब से उसे अपने अस्तित्व का भान हुआ था, वो यहाँ की खबर रखता था, जिसके बारे में अनामिका जी भी नहीं जानती थीं। जीवन अन्वय के भावों को पढ़ने में माहिर था। जैक से ज्यादा समझदार था वो इस मामले में। वो जानता था कि अन्वय को आन्या पसंद है, इसलिए जैक को आन्या को ऐसे देखता देख वो घबरा गया। उसने अन्वय को देखा, फिर जैक को देखने लगा। अब दोनों का ही ध्यान अन्वय की बातों पर नहीं था। अन्वय ने उनका घबराया चेहरा देखा, फिर जैक और जीवन की निगाहों का पीछा किया, तो खिड़की पर खड़ी आन्या को देखकर उसकी भौहें तन गईं। आन्या ने उसे देखकर मुस्कुरा दिया और उंगलियों से इशारा किया कि कमाल लग रहा है, साथ ही फ्लाइंग किस भी दे डाली और आंख मार दी। अन्वय ने उसे घूरते हुए उस पर से निगाहें हटा ली। वहीं जैक और जीवन अब हैरानी से अन्वय को देखने लगे थे। अन्वय ने उन्हें देखा और सख्त लहजे में बोला, जो कहा है उस पर अपना ध्यान लगाओ, आगे क्या करना है मैं बाद में बताऊंगा, अभी के लिए जाकर अपना काम शुरू कर दो। दोनों ने उसका गुस्से से तमतमाता चेहरा देखा तो सर झुकाकर हामी भरी और वहां से चले गए। जाते हुए जीवन ने जैक को देखकर कहा, जैक, मिस आनीकर से अपना ध्यान हटा ले, अगर मास्टर को पता चला कि तू उन्हें लेकर क्या सोचता है तो तुझे छोड़ेंगे नहीं, उसने उसे आगाह करना चाहा। जैक ने उसे देखकर और गंभीरता से बोला, मुझे वो पसंद है, इससे ज्यादा और कोई बात नहीं। मुझे पता है कि वो मास्टर की दीवानी है, आज से नहीं पहली मुलाकात से, इसीलिए मैंने उनके लिए कभी कुछ गलत नहीं सोचा है और ना ही आगे कभी उन्हें लेकर कोई गलत ख्याल में अपने अंदर आने दूंगा। उसकी बात सुनकर जीवन की जान में जान आई। वे दोनों वहां से चले गए। अन्वय ने एक बार फिर नजरें आन्या की ओर घुमाई, जो अब भी लबों पर मोहिनी मुस्कान सजाए उसे ही देख रही थी। अन्वय ने उसे घूर कर देखा और पलक झपकते ही चमगादड़ बनकर हवा में उड़ान भरी और सीधे उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। आन्या घबराकर दो कदम पीछे हट गई और अपने सीने पर हाथ रखते हुए बोली, जब से मुझे तुम्हारी असलियत पता चली है, तुम मेरे सामने ऐसी हरकतें क्यों करने लगे हो? पहले जैसे इंसानों की तरह नहीं रह सकते। दरवाज़ा है यहाँ और तुम्हारे पास पैर भी हैं, तो अगर मेरे पास आना ही था तो इंसानों की तरह चलकर नहीं आ सकते थे। ऐसे हर बार मेरी धड़कनों को बढ़ाना ज़रूरी है क्या? आन्या ने उसे देखकर नाराज़गी से मुंह फुलाया। बदले में अन्वय ने उसे घूरते हुए उसकी ओर कदम बढ़ाते हुए कहा, ये क्या कर रही थी तुम अभी अभी? आन्या ने कुछ देर पहले की अपनी हरकत याद की और मुस्कुराकर बोली, कुछ नहीं, बस तुम्हें देख रही थी और बता रही थी कि जब तुम एकदम सीरियस रहते हो तो कितने हॉट लगते हो। आन्या, अपनी लिमिट्स में रहो, ये हमारा घर नहीं है, महल है मेरा। अगर दोबारा तुमने ऐसी हरकत की तो फिर देख लेना क्या करूंगा मैं तुम्हारे साथ। अन्वय ने उसे गुस्से में धमकी दी, पर आन्या पर असर ही नहीं हुआ। उसने उसे प्यार से देखते हुए कहा, अन्वय, मैं यहाँ खाली बैठे बैठे बोर हो रही हूँ। जूली भी अंदर नहीं आती, कहती है उसे बाहर रुकने की आज्ञा दी गई है। तुम भी नहीं रहते, मैं किससे बात करूँ? टीवी भी नहीं है यहाँ और मेरे पास फोन भी नहीं है, मैं ऐसे खाली नहीं बैठ सकती। कुछ करो ना, मुझे भी अपने साथ रहने दो, तुम अपना काम करते रहना। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगी, बस खामोशी से तुम्हें देखती रहूंगी, मुझे तुम्हें देखना बहुत पसंद है। उसकी बात सुनकर अन्वय के भाव एकदम कोमल हो गए। फिर उसने बिना किसी भाव के कहा, नहीं, तुम मेरे साथ नहीं रह सकती। हाँ, अगर तुम यहाँ बोर होती हो तो चलो, मैं तुम्हें बुक्स दे देता हूँ, खाली बैठे बैठे पढ़ती रहना, और मैं जूली को कह देता हूँ, वो तुम्हारे साथ ही रहेगी, तो तुम जितना चाहे बात करती रहना उससे। उसकी बात सुनकर आन्या का चेहरा खिल उठा। उसने झट से हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ, ये सही रहेगा, चलो तुम खुद देख लेना, जो बुक पसंद आई ले लेना। अन्वय ने गेट की ओर बढ़ते हुए कहा तो आन्या झट से उसके पास आ गई और उसकी हथेली थाम ली, जिससे अन्वय की निगाहें उसकी ओर घूम गई। आन्या ने उसे देखकर मुस्कुरा दिया तो अन्वय ने सर हिला दिया और आगे बढ़ गया। दोनों जैसे ही कमरे से बाहर निकले, जूली अन्वय को आन्या के साथ देखकर हैरान हो गई। फिर जल्दी ही उसने खुद को समझाया और नजरें झुका ली। अन्वय आन्या को लेकर आगे बढ़ गया। जूली ने नजरें उठाकर उन्हें देखा तो दोनों के जुड़े हुए हाथ देखकर उसके लबों पर मुस्कान तैर गई। वहीं पीछे से गुजरती मोहिनी ने जब ये देखा तो उसकी आंखों में आन्या के लिए नफरत के भाव उभर आए। वो जहर के घूंट पीकर वहां से दनदनाते हुए चली गई। जब से अन्वय आया था वो उसके करीब जाने की कोशिश कर रही थी, पर अन्वय उसकी तरफ जरा भी ध्यान नहीं दे रहा था और आन्या के इतने करीब चला जाता था। यही बात उसके गुस्से की वजह थी और अब आन्या उसे अपनी सबसे बड़ी दुश्मन लगने लगी थी। अन्वय आन्या को लेकर एक कक्ष के बाहर पहुंचा जो आन्या के कमरे से बड़ा था। अन्वय ने दरवाजा खोला और आन्या के साथ अंदर कदम रखा तो आन्या आंखें बड़े बड़े करके सब देखने लगी। वो कमरा उसके कमरे से ज्यादा बड़ा और बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। सब कुछ सलीके से रखा हुआ था, जैसा ही अन्वय की आदत थी। बड़ी सी विंडो के साइड में बुकशेल्फ था जिस पर बहुत सारी बुक्स लगी हुई थी। अन्वय आन्या को वहीं लेकर गया, फिर सामने की तरफ इशारा करते हुए बोला, देख लो, जो भी अच्छी लगी ले लेना। आन्या बुक्स निकाल निकाल कर देखने लगी और अन्वय कुछ पेपर्स देखने लगा। नई औषधियों के शोध पत्र थे वे, मतलब फॉर्मूला था जिसे वो तैयार करने में लगे हुए थे। आन्या ने कुछ देर देखने के बाद तीन बुक्स ले ली, फिर अन्वय को देखकर बोली, मैं यहाँ बैठकर पढ़ सकती हूँ। उसकी बात सुनकर अन्वय की निगाहें उसकी ओर घूम गई तो उसने अपनी बात उसके सामने रखते हुए आगे कहा, यहाँ मुझे ज्यादा बेहतर लग रहा है, तुम्हारे होने का एहसास है इस कमरे में। मैं यहाँ सहज रहूंगी, चिंता मत करो, तुम्हारी किसी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगी। ठीक है, मैं जूली को बोल देता हूँ यहीं आ जाए, अन्वय ने चेयर पर से उठते हुए कहा तो आन्या उसे रोकते हुए झट से बोली,
नहीं, रहने दो, उसे कहो वो भी आराम कर ले, यहाँ मुझे किसी चीज से कोई खतरा नहीं है, तुम्हारे होते हुए कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तो तुम चिंता मत करो और उसे भी मेरी वजह से परेशान मत करो। मुझे अच्छा नहीं लगता वो गार्ड की तरह मेरे पीछे पीछे रहती है, मैं पहले की तरह फ्री रहना चाहती हूँ। मैं तुम्हें लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकता, यहाँ हर तरफ वैम्पायर ही वैम्पायर हैं और तुम एक इंसान। माना यहाँ सब मेरे अंडर है, पर कब कौन धोखा दे दे कहा नहीं जा सकता, इसलिए जूली हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगी। इतना कहकर अन्वय वहां से निकल गया। आन्या मुंह बनाकर उसे देखती रही, फिर उसकी चेयर पर बैठ गई। दो नॉवल साइड वाले टेबल पर रखे थे, उसने एक नॉवल लेकर पढ़ने लगी। अन्वय ने उस कमरे के आसपास अपने भरोसेमंद वैम्पायरों को सुरक्षा करने के लिए काम पर लगा दिया था। वे वही थे जो आन्या के कमरे में थे। आन्या को ये पता ही नहीं था, वो आराम से बुक पढ़ रही थी। अन्वय शाम को वापस अपने कमरे के पास आया। जूलियत भी बाहर ही खड़ी थी। अन्वय ने उसे वहां देखा तो कुछ हैरानी से बोला, तुम अभी तक यहीं हो? मिस आन्या अब तक बाहर नहीं आई हैं और आपके कक्ष में जाने की आज्ञा नहीं है किसी को, उसने सर झुकाकर कहा। अन्वय के भाव सख्त हो गए ये सुनकर। उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला और अंदर आकर देखा तो आन्या उसी आराम कुर्सी पर बड़े सुकून से सो रही थी। बुक उसके सीने पर रखी हुई थी, शायद पढ़ते पढ़ते ही सो गई थी। इस वक्त उसके चेहरे पर सुकून के भाव थे। अन्वय ने उसे सोते देखा तो उसके भाव कुछ कोमल हो गए। उसने बाहर आकर जूली को देखकर कहा, तुम जाकर आराम करो, आन्या मेरे साथ है तो उसे कोई खतरा नहीं है। जूली हामी भरकर वहां से चली गई। अन्वय वापस अंदर आ गया, उसने बुक लेकर उसे बंद करके टेबल पर रख दिया, फिर आन्या को ध्यान से अपनी बाहों में उठाते हुए ले जाकर बेड पर लिटा दिया, फिर उसे अच्छे से ब्लैंकेट से ढक दिया। कुछ देर उसे देखता रहा, फिर अपने कपड़े लेकर फ्रेश होने चला गया।